نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير amazed by الأسماء الحسنى. ہر روز ہم ایک نئے نام کے ساتھ حیران ہوتے ہیں اور اتنے حیران ہوتے ہیں کہ ہماری حیرت گم ہو جاتی ہے اور حیرت ہو بھی کیوں نہ, وہ ذات ہی ایسی کہ جس کے ہر کام میں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے, وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمیں کیا ہم سے پہلوں کو اور جو دنیا میں ہیں ان سب کو پیدا کیا. جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا اور جب کوئی نہیں رہے گا تو وہ ہوگا. تو آج ہم اس سیریز میں جس نام پہ ہیں وہ الاول ہے. چند باتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے متعلق کر کے پھر آج کے اس نام کو شروع کریں گے. الحمدللہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی نام کیے ہر نام اپنی جگہ پہ ایک مکمل نام تھا. اب کچھ نام جیسے کہ آج کا نام الاول, یہ ناموں کی اس قسم میں سے ہے کہ جو جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں. جب آپ ایک چیز پڑھتے ہیں جیسے کہ آج ہم الاول کے بارے میں جانیں گے تو دوسری کے پڑھنے کے بعد پوری بات سمجھ آتی ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے پرفیکشن ہے کیسے, دو چیزوں کے آپس میں ملنے سے. تو اللہ تعالیٰ کا نام الاول انہی ناموں میں سے ہے جو بالکل مختلف ہیں. اور الاول والآخر یا الاول الآخر, اسی طرح ظاہر والباطن, تو یہ دو چیزیں ہیں. تو الاول کیا ہے آج انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اور پھر نیکسٹ ہمارا سیشن الآخر کے بارے میں ہوگا, تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. تو الاول سب سے پہلے, اس لفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کس سے پہلے. سب سے پہلے آسمان سے پہلے, زمین سے پہلے, رات سے پہلے, دن سے پہلے, کسی بھی مخلوق کے ساتھ آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے. یہ وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جب بھی سامنے آتا ہے تو یاد رکھیے کہ تین چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی. آج ہم انہیں تین چیزوں کے ارد گرد اپنے پورے وقت کو رکھیں گے. اول کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. آپ میں سے کبھی کوئی اول آیا؟ اول, دوئم, سوئم, ہم بھی اپنے اسکول کے زمانے کو یاد کریں تو ہمیں محسوس ہوگا نا. تو اول ایک وہ اول, سب سے پہلے ہونا. جو فرسٹ آتا ہے اس کو اول کہتے تھے اردو میں, آج پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیونکہ اردو بھی بدل گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلی ہے. سب سے پہلے ہونا پھر اس طرف واپس آنے کے معنوں میں بھی ہے. جیسے کوئی چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے نا, تاویل کا لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا, تو تاویل میں یہ معنی ہوتا ہے. اور پھر تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے سب سے اہم ہونا, یعنی پرائیورٹائز کے معنوں میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الاول کو اگر جاننا چاہیں تو چار تعریفیں ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو اس نام کا بالکل پورا رنگ سمجھ آئے گا. کیا ہے وہ؟ الاول ہوا متقدم للحوادث بأوقات لا نہاية لها فالأشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اللہ رب العزت عالم میں رونما ہونے والی اور وجود پانے والی ہر ہر چیز سے پہلے موجود ہیں. اور اللہ رب العزت کا ان تمام واقعات و حوادث پر مقدم یعنی پہلے ہونا با اعتبار زمانہ ہے, یعنی وقت اور زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے آگے سب سے پہلے. اور ایسا وقت ہے کہ جس کی تحدید اور انتہا کوئی نہیں. کیا پتہ چلا اس مشکل سے جملے میں ہم نے جو چیزیں دیکھیں اس میں کیا ہے؟ ہر موجود چیز کے وجود سے بیشتر اس کا وجود تھا. اور وجود کے اعتبار سے تمام چیزیں جو آج بھی آپ کو مجھے موجود دکھتی ہیں اور کائنات میں, سب سے پہلی ہستی اللہ کی ہے کیونکہ ساری مخلوقات اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ذات میں بلکہ صفات میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے اول ہے. ذرا سا سوچئے, جب کوئی بھی نہیں تھا تو تب اللہ تھے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کی مثال سے سمجھیے, یعنی بیٹے سے پہلے باپ اور باپ سے پہلے دادا اور دادا سے پہلے پردادا. دنیا میں ہر انسان کو وجود میں آنے سے پہلے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. بالفرض اگر باپ ہی نہ ہوتا तो बेटा कैसे आता? और अगर आज किसी का बेटा ही नहीं तो आप पूछ सकते हैं, सुनाइए पोता कब हो रहा है? आप कहेंगे, पोता कहाँ से आएगा, बेटा ही नहीं है। नवासा कहाँ से आएगा, बेटी ही नहीं है। तो ये दुनिया में आपके मेरे अपने हिसाब की चीजें हैं, हम इन चीजों को दिन रात देखते हैं। एक चीज पहले होती है फिर दूसरी होती है। बेटा है तो बहू आएगी ना, बेटा ही नहीं है तो बहू कैसे आएगी। बेटी है तो दामाद है ना। यानी इंसानों की कमजोरी है कि उनको अपने से पहले कुछ चीजों की जरूरत होती है। अल्लाह सुबहाना ताला ऐसी सारी चीजों से बिल्कुल बेनियाज है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला सबसे पहले हैं। और अगर कोई पूछे, अच्छा अल्लाह से पहले क्या है, तो कहे हमें नहीं पता। यहाँ सबसे पहला सवाल जो जहनों में आता है कि अल्लाह से पहले क्या है, तो याद रखिए इस मसले को हमारे असलाफ बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अल्लाह ताला का अर्श था, अल्लाह ताला आज किधर है, आसमान पे, इससे पहले क्या थे, किधर हैं, जितना अल्लाह ने ही बता दिया अपने नबी की जुबान से या कुरान से, बस वही काफी है। कान अर्शो अलल मा, पानी पे था बस। कोई पूछता है इससे पहले क्या था, कुछ नहीं, क्योंकि आप जब कोई चीज कहेंगे ना, वो कहेंगे फिर उससे पहले क्या था। तो याद रखिए सूरत फातिहा के बाद सूरत अल बकरा पढ़ते ही पहले ही जुमले कह यो मेनू न बिल गईब। हमारे ईमान की बुनियाद जो है वो इस बात पे है कि हम अल्लाह ताला की हर बात को मानेंगे। कुछ चीज़ें आप अपने गैजेट्स के ज़रिए से और अपनी दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जैसे माँ के पेट में क्या है, आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं कि बेटा है कि बेटी है। इसी तरह आपकी कमर में दर्द क्यों है, आप MRI करवाइए, आपको पता चल जाता है। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला की हस्ती किसी गैजेट और किसी और चीज़ से नहीं देखी जा सकती, सिर्फ अल्लाह ताला ही नहीं, फरिश्ते, यानी हर वो चीज़ जो आज हमसे गायब है, हम उसको अपने इल्म के साथ और अपनी चीज़ों के साथ नहीं देख सकते। अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी हस्ती और उसकी मार्फत को पाने के लिए बस मान लीजिए कि कैसे एस इट इज़ कमा यली कुशान हो। तो अल्लाह ताला के लिए ये बात समझ कर आपका दिल खुल जाना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला, दुनिया में जो वाक़यात हुए, हवादिस के हादसे, कुछ भी, हदीस कहते नई चीज़ को, हदीस भी इसी से है, क्योंकि एक नई चीज़ होती है ना, इसका ऑपोजिट बिदत होता है, बदास है, नई चीज़, ठीक है। तो दुनिया में कुछ भी हुआ, मसलन क्या हुआ, दुनिया बनी, इंसान को भेजा गया, सूरज चांद सितारे हुए, गैलेक्सीज बनी, हमने पिछले नाम के साथ देखी थी ना कायनात की कुछ चीज़ें, इन सब से पहले अल्लाह सुबहाना ताला थे। और अल्लाह ताला की ज़ात इतनी खूबसूरत ज़ात कि जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें अल्लाह की ज़ात के बाद वजूद में आईं, जबकि वो ज़ात सब चीज़ों पर सबकत ले गई। तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करने से पैदा हुईं। अल्लाह के नबी सल्लम अपनी दुआ में अक्सर ये कलेमात पढ़ा करते थे, अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लक शैयुन वअंतल आखिरु फलैसा बादक शैयुन। ए अल्लाह, आप ही सबसे पहले हैं, आपसे पहले कोई भी चीज़ ना थी, और सबके बाद भी आप ही होंगे, और आपके बाद कोई ना होगा। तो ये थी पहली तारीफ अलव्वल नाम की। दूसरी तारीफ इमाम हलीमी हैं, वो फरमाते हैं, अलव्वल जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जिससे पहले कोई नहीं, और अल आखिर वो ज़ात जिसके बाद कोई नहीं। इसकी वजह ये है कि लफ्ज़ पहले, जैसे आज हम अभी बोल रहे हैं, और बाद जो कि अगले नाम के साथ बोलेंगे, लफ्ज़ पहले और बाद इंतहा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले होने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की इब्तदा की जानिब से एक हद, और बाद में होने का मतलब ये है कि किसी चीज़ की इंतहा की जानिब से एक हद। बस जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना इब्तदा है और ना इंतहा, बस वही अव्वल है और वही आखिर है। क्या खूबसूरत बात है। अब मैं अरबी में पढ़ देती हूँ, जो नोट करना चाहे कर ले। अलव्वलु अल्लसी ला कब्ल लहू वल आखिरु हुवल्लसी ला बाद लहू वहाजा लियन्ना कब्लु व बादु निहायतानी फकब्लु निहायतुल मौजूदी मिन कब्ली इब्तदाई ही व बादु गायतुहु मिन कब्ली इंतहाई ही फ़ाइज़ा लम यकुल लहु इब्तदाउन वला इंतहाउन लम यकुल लिल मौजूदी कब्लु वला बादु लकानहु वला अव्वलु वला आखिर। बिल्कुल वही मिसाल जो मैंने आपको दे दी باپ اور دادے کی صورت میں. تو لفظ اول اور آخر اس بات کو بتاتا ہے. دیکھیے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, اور اپنے اپنے دور میں لوگوں نے جب بحثیں کی اور ایسے معاملات رکھے تو اس کے بعد انسان کو پھر ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کسی نے ایک دور میں ایک امام کے ساتھ بحث کی تھی کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ہے تو اس سے پہلے کیا ہے, اور اسی طرح سے اللہ کا رخ کیا ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک سے پہلے کیا ہے. آپ کہیں گے زیرو, تو زیرو سے پہلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو بس یہی جواب ہے. اور یہ بتاؤ کہ جب تم آگ جلاتے ہو تو اس کے شعلے کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کہا کہیں نہیں ہوتا, جدھر سے دیکھو اس کا ادھر ہی رخ ہے. کہا بس یہ ہے وہ. تو نہ سمجھنے والے بحث کرتے ہیں آپ, میں تو یہی کہتے ہیں کہ میرا رب جیسا بھی ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہی ذات ہے, وہی ہستی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا میرا تعلق جب جڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جس نام کی کتنی برکتیں ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ وہی ہستی ہے جو آپ کے میرے سارے کام کرتے ہیں. تو پھر دہراتی ہوں, پہلی بات, اللہ ہر چیز کے وجود سے اول ہیں, وہ اس وقت سے ہیں جبکہ کوئی چیز بھی نہ آئی تھی. اور عمران بن حسین سے ایک روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے جبکہ کچھ بھی نہ تھا, اور ان کا عرش پانی پر تھا, اور اللہ نے ہر چیز کو لوحے محفوظ میں رکھا اور آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے, تو بس بات ہی ختم ہو گئی نا. اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں, نہ ہم اس کے بارے میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کے بعد اب آگے چلتے ہیں تیسری تعریف. آپ دیکھیے کہ لفظ الاول اور اسی طرح سے الآخر, یہ دونوں تعریفیں ساتھ ساتھ چلیں گی, پھر ہی بات سمجھ آتی ہے. اور بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام جیسے کہ یہ ہے الاول اور الآخر, ان کو الگ سے بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ذہن بھٹکنے لگتا ہے. ساتھ بتاؤ پھر پرفیکشن ہوگی. تو لہٰذا الآخر کیا ہے؟ هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها. امام زجاج کہتے ہیں الآخر ہر چیز کے لیے سرچشمہ قوت, اللہ رب العزت کی ذات ہے, تمام اشیاء ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت کا وجود ہمیشہ رہے گا. تو کیا پتہ چلا کہ الاول کو سمجھنے کے لیے الآخر اور الآخر کو سمجھنے کے لیے الاول کی ضرورت ہے. اور چوتھی تعریف الآخر هو الباقی بعد فناء الخلق. الآخر وہ ہے جو باقی رہے گا مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی. وَلَيْسَ مَعْنَى الْآخِرِ مَا لَهُ الْإِنْتِهَاءُ كَمَا لَيْسَ مَعْنَى. کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی وہ ذات ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے اوپر بڑھ کر رہے گی, اور اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ كَمَا لَيْسَ مَعْنَى الْأَوَّلِ مَا لَهُ الْإِبْتِدَاءُ فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَلَيْسَ لِكَوْنِهِ أَوَّلٌ وَلَا آخِرٌ. اردو میں بولوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. امام خطابی کی یہ رائے ہے, کہتے ہیں کہ اللہ یعنی الآخر جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا. اور الآخر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی انتہا اور اختتام ہو, جیسا کہ الاول کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی کوئی ابتدا ہوئی ہو. تو پتہ کیا چلا کہ جب کوئی نہ تھا اور کچھ بھی نہ تھا, جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا اور کچھ نہ رہے گا, یعنی یہاں سے مطلب کوئی اور کچھ ہے, اس وقت بھی اس کے بعد اللہ جل جلالہ ہوں گے. تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ ذرا اپنے دل میں ایک احساس لائیے. الاول وجود کے اعتبار سے, تمام موجودات کے اعتبار سے, کائنات کی ہر چیز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مقدم ہے, پہلا ہے, کیونکہ ساری موجودات تو اسی نے پیدا کی اس لیے وہ سب پر اول ہے. سورت حدید کے بالکل شروع میں چار صفات اکٹھی آتی ہیں جس میں الاول الآخر اور ظاہر اور باطن ہے, جسے ایسے لگتا ہے کہ بڑی جامعیت کے ساتھ بات سمجھ آ جاتی ہے. ذرا سے غور کر کے اس آیت کو تلاوت کرے نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ چاروں سائڈوں سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے. پھر اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے اور بڑی اہم آیت ہے. اور روایت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی رات کو سونے سے پہلے تسبیحات, جن صورتوں کے آغاز میں یہ سبحا اور یسبح ہوا تھا نا, تو یہ پڑھا کرتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے ان نفی ہن آیتن افتل من الف آیا. ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے, مراد یہی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے. ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करें। वो तो है अव्वल और वो तो है आखिर। हम अपने बारे में सोचिए कि हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ने और सुनने के बाद क्या अमल करना है। असल तो बात इसमें समझ आती है ना। आप देखिए कि अल्लाह ताला तो अपनी शान के एतबार से, अपने जमाल और अपने कमाल के एतबार से बेमिसाल है। वो सबसे पहले हो, उसकी तरफ चीज़ें वापस आएं, वो सबसे अहम हो, वो तो है। लेकिन आपको मुझे इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना है कि आज वजूद के एतबार से जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ना, ये अल्लाह की मरहून मिन्नत हैं। एक हदीस की दुआ भी बड़ी प्यारी मुझे याद आ रही है इस वक्त, जो आप तहज्जुद के वक्त पढ़ा करते थे कि ए अल्लाह, अगर तू ना होता तो हम ना होते, हिदायत ना पाते। लौलंता, अगर तू ना होता हम कैसे हिदायत पाते। तो ना सिर्फ ये कि ज़ात बल्कि सिफात में भी अल्लाह सबसे अव्वल है। ज़रा सा इसका कंपेरिज़न करते हैं। कोई मखलूक, हत्ता के अम्बिया कराम भी इसके करीब तक नहीं पहुंचे हुए कुजा के बराबर हों। हमारे कल्चर में एक बात है, दीन में इसका कोई दखल नहीं है, मैं तो कल्चर की बात करूंगी। जहां लफ्ज़ अल्लाह लिखेंगे ना, साथ ही बराबर मोहम्मद भी लिख देंगे। अक्सर क़िते पहले जो मिलते थे अभी भी होते होंगे, कम हो गया रिवाज क्योंकि उसकी जगह और चीज़ें जो आ गई। तो या अल्लाह और साथ ही या मोहम्मद। अगर खाना काबा की तस्वीर बनाएंगे ना, तो साथ ही मस्जिद नबी की भी लगाएंगे। ये कल्चर है हमारा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहती। खैर, दीन में हमें तो इसकी कोई दलील ना मिली, लेकिन समझिए आज बहुत सारे लोग चाहे मोहब्बत ही के नाम पे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना कहीं ज़रूर अल्लाह ताला के साथ जोड़ना चाहते हैं। काबे की अजमतों का मुनकर नहीं हो, काबे का भी काबा, मीठे नबी का रोज़ा। ये कुछ ऐसी ही बात है, हद से बड़ी भी बात है। साहबा ऐसी मोहब्बत नहीं करते थे, तकाबुल क्यों करें? और हमारी तो आदत भी है कल्चरली, सास की तारीफ़ करें तो बहू की बुराई बन जाएगी, और कोई आपकी बहू की तारीफ़ करे तो कहते हैं हाँ हमने नहीं अच्छा रखा हुआ, हमने इसको क्या तकलीफ़ दी। तो ये चंद जुमले लिख लें, कोई मखलूक हत्ता के अम्बिया भी इसके करीब तक नहीं पहुँचते। चाहे नबी सल्लम का मुकाम सारे इंसानों से आला, अल्लाह के साथ किसी का कोई बराबरी का तसव्वुर भी नहीं है। फिर दूसरी बात देखिए कि अपनी तख्लीक के एतबार से अव्वल है, इसी ने चीज़ों को ईजाद किया, इनकी सूरत बनाई और इनकी तख्लीक की। आज कोई ये सवाल करता है, अच्छा अल्लाह से पहले क्या था, भी क्यों पूछते हो? आप देखिए कि बच्चा जब बहुत सारे सवाल करने लगे ना, तो माँ बाप चिढ़ जाते हैं, कहते हैं तुम क्या पूछ रहे हो, अमल करो। एक जुमला लिख लीजिए कि कायनात के बारे में देखना, सुनना, गौर करना, किताब को पढ़ना ये पसंदीदा है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात के बारे में बहुत बात करना पसंदीदा नहीं है। पहले दिन से मैंने आपसे ये माजरत की थी कि इस सीरीज़ को पढ़ाते हुए मेरा दिल थक थक कर रहा होता है। मैं ऐसी साहब के लाके मिलाती मिलाती आपको खुश करती करती अपने मालिक के बारे में कोई ऐसी बात कह दूं जो मेरी औकात ही नहीं है। ना मैंने उसको देखा, ना कोई उसको देख सकता है। वो तो इतनी लतीफ़ चीज़ है, उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो फिर कैसे हो सकता है कि आप उसके बारे में सब जानें? और लोग कहते हैं नहीं हमें जानना चाहिए, तो सवाल लिखिए, क्या आप सारी चीज़ें जानते हैं कायनात की? आप पूरे ग्लोब को जानते हैं? आप पूरी दुनिया, जो गैलेक्सीज और जो हमने पिछली वीडियो देखी थी कि उसमें जो कुछ दिखाए गए सारे राज जान गए? आप तो एक एटम को ना जान सके अभी तक। अभी तो इंसान एटम के अंदर घुस के न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के अंदर घुसने की कोशिशों में। आपको अभी तक क्रोमोसोम की पूरी बात नहीं पता, डीएनए की नहीं पता, और क्या आपको अपने वजूद की सारी बातें पता है? ये जिस्म जिससे हम दिन रात फ़ायदा उठाते हैं, क्या हम इस जिस्म के एक एक पेचो खम को जानते हैं? तो क्या ज़रूरत है उस बारे में बात करने की कि जिसके बारे में बात करने से बहकने का डर हो? वैसे भी आप देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना दुनिया में, मतलब बादशाह, किंग, या सदर, वज़ीर, मुशीर, आप कोई भी नाम ले लीजिए अपने हिसाब से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनकी ज़ातियात पे लोग बहुत बात नहीं करते। क्यों? लोग उनको छुपा छुपा के रखते हैं। जो जितना मशहूर हो जाता है, जितना पब्लिक प्रॉपर्टी बन सकता है, उतना उसको दूर कर जाते हैं कि क्यों लोग दखल दें। तो आपका मेरा काम क्या है, इतना जान लीजिए कि पैदाइश की इब्तदा अल्लाह ताला ने की, दैट्स इट। चलिए अलव्वल, पहली तख्लीक। कायनात में पहली तख्लीक अलव्वल की तरफ से हुई। अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ जो बनाई वो क्या थी? कलम। हदीस है, सबसे पहले कलम बनाया, फिर हुक्म दिया उक्तुब, लिखो। उसने कहा क्या लिखूं? फरमाया हर एक की तकदीर लिखो यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। सबसे पहली मखलूक कलम है, ये लिख लीजिए। ये बातें लोगों को फिर अच्छी लगती हैं, बाद में क्विज़ करते हैं, आपको पता है सबसे पहले क्या बना? कलम। वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून। तो अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात अल्लाह ताला का कमाल देखिए, सबसे पहला काम लिखा, अमल की बातें साथ साथ लिखते जाइए। कलम की इज्जत कीजिए, लिखिए, इस वक्त भी लिखिए, लिखा जाए ना जाए, पूरे लव समझ आए ना, लिखिए। फ़ायदा क्या होता है, जब आप लिखते हैं आपका माइंड फोकस हो जाता है, बातों से कभी असर नहीं होगा। याद रखिए, आप इमाम काबा के सामने बैठे भी तिलावत उनसे सुन रहे होंगे ना, अगर आप बीच में बातें कर रहे हैं ना तो आपके दिल पे नहीं आएंगी। तो अल्लाह सुबहान तआला ने कलम को बनाया, इससे क्या पता चलता है, अपने लिए अमल की बात लीजिए, चीज़ों को लिखा करें। जो डॉक्यूमेंटेशन, या जिसको पहले हम उर्दू में क्या नाम देते थे, दस्तावेजात, राइटिंग करें, इसकी अहमियत है। हम बाज़ बाज़ ज़ुबानी बातें करते हैं, भाई बहन का ही मामला है ना, छोटे छोटी सी बात ही है ना, बड़ी सी नहीं। कुरान क्या कहता है, आयत दैन जो कुरान की सबसे लंबी आयत है, वो लिखने पढ़ने के बारे में, मामलात लेन देन के, चाहे छोटा हो या बड़ा लिखिए। फिर इस तरह आप देखिए कि लफ्ज़ अल अव्वल कुरानी आयत की रोशनी में अगर आप देखें सिर्फ एक बार, आप कहते बार बार क्यों नहीं आया, ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही बार काफ़ी है। और आयत वही है सूरत अल हदीद आयत नंबर 3, हुवल अव्वल वल आखिर, वही अव्वल है और वही आखिर है। यानी इंसान कहता है कि तुम्हारी असल भी वही है और पलटना भी तुमने उसी तरफ है। अब इस नाम के साथ असरात क्या है तो नोट कीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें दुआएं मिलती हैं तो वसवासे शैतानियाँ, शैतानी ख्यालात आते हैं। हर एक अपने आप से पहले पूछे, क्या आपको वसवसे आते हैं? कभी पूछ के देखिए आंटी जी से, कैसी लंबी लिस्ट खोलेंगी, क्या बताऊँ, वसवसे आते हैं। किसी को क्या आता है, मेरा बेटा घर नहीं आया, खैर है, हाँ इसको आज कुछ हो जाएगा, भाई आंख फड़क रही है। ऐसी अगर चीज़ें आपके साथ भी है ना तो उसका इलाज लीजिए। क्या हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर कभी तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला और दीन हक के मामले में शैतान कोई वसवसा डाले तो ये आयत आहिस्ता से पढ़ लिया करो, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ली शयइन अलीम, वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन और वो हर चीज़ को जानने वाला है। तो आप आज से ये काम नोट कीजिए अपने लिए कि कभी अल्लाह की ज़ात के बारे में वसवसा आ जाए, पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह के हाथ में कुदरत है कि नहीं, पता नहीं अल्लाह इसको सही करेगा कि नहीं, पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं, वैसे होगा कि नहीं, तो आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को पाक कीजिए। और वैसे भी वसवसा जो होता है ना, शैतान का एक चोर दरवाज़ा होता है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। और इसी तरह आगे देखिए तो सूरत हूद की आयत नंबर 7 में एक बहुत ही प्यारा नुक्ता है, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम वकाना अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन कुलता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौति लयकूलन्ना अल्लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। अब पहला हिस्सा आपके लिए उसी का तर्जुमा करूँगी, अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमानों ज़मीन को पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। नोट किया आपने, कान अर्श हु अलल्मा, ये है लफ्ज़, यानी अल अव्वल का इब्तदाई मुकाम अर्श पानी पर था। अब ये अर्श पानी से उठकर आसमानों पे कैसे चला गया, 7वें पे कैसे चला गया, आपको मुझे क्या लगे, ये रूह कैसे चली जाती है ऊपर, और ये आसमानों से वही कैसे उतरती थी, ये ज़मीन से बादल कैसे ऊपर चले जाते हैं। तो याद रखिए लफ्ज़ अल अव्वल आपको मुझे अपनी बेबसी भी बता रहा है। ज़्यादा ना सोचो, इतनी अक्ल ना इस्तेमाल किया करो, लिखिए ये अमल की बातों में। हर बात पे अक्ल नहीं दौड़ाई जाती, बस दफ़ा बच्चे अगर हमसे कुछ पूछें जो हम नहीं बताना चाहते या अभी उनके जहन में वो बातें नहीं आ सकती या अगर आ गई तो नुकसान होगा, तो आप क्या कहते हैं कि आप बेटा अभी छोटे हैं, आप अभी नहीं समझते। बाप से पूछे, अबू आप कारोबार कैसे करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, बैंक में कितनी मनी है, तो गुस्सा आएगा ना। तो बस यहाँ भी सोच लीजिए, अल्लाह ताला के नाम अल अव्वल के आगे अपने आप को बेबस कर दीजिए, बस जो वो कहता है मान लीजिए। और यहाँ से ये भी पता चलता है, लिखिए अमल की बात, कि हम उसकी मखलूक हैं और मखलूक मजबूर होती है, बेबस है। हमारी शान बंदगी ये है कि हम अल्लाह की हर बात पे कहें ठीक है। वो बच्चा कितना प्यारा लगता है माँ को, जो माँ की हर बात पे कहता है ठीक है मामा, ओके मामा, ओके जो आपने कहा वही ठीक है। फिर इसी तरह आगे चलते हैं तो एक और आयत लीजिए कुरान पाक की, सूरत यूनुस 34, कुल हल मिन शुरकाईकुम मैं यब्दुल खल्का थुम्मा युईदुहु आप यूं कहिए कि तुम्हारी शरीकों में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे, यानी आप देखिए कि हम अल्लाह ताला के अव्वल होने के मुख्तलिफ मराहिल में पहला मरहला इसमें देख रहे हैं, और वो क्या है, जमाने में पहला, अकॉर्डिंग टू दी टाइम, पहले से पहला। जैसे आज देखिए कि 2020 है, तो 2019 इससे पहले था, 2018 उससे पहले था, 21 इन सबसे पहले था, तो बैकवर्ड गिनती चलती है ना, तो ये अव्वल पीछे से पीछे। कहा तुम्हारे शरीक जिनके आगे तुम माथे टेकते हो, सजदे रुकू करते हो, ये बताओ कोई ऐसा है जो पहली बार पैदा करे? दूसरी बार भी कोई नहीं कर सकता, पहली बार कैसे करता? क्यों कब्रों पे जाकर बुजुर्गों को तंग करते हो? वो बेचारे अल्लाह के पास अपनी जगहों पे पहुंच चुके, अपने मुकाम पे, सोते को तो तुम ना उठाओ, और जो दुनिया से चला गया उसके दर जाके खटखटाओ। कैसी बात करते हो, शरकाइकुम, ये तुम्हारे शरीक है कोई जो पहली दफा पैदा करे, और सुम्मा युईदुहु, फिर दूसरी बार भी पैदा कर दे? कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क सुम्मा युईदुहु, आप कह दीजिए अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम कहाँ से फिरे जाते हो? क्या पता चला? सबसे पहला होना लाजमी है पहले को पैदा करने के लिए। देखिए ना, अगर अल्लाह ही ना होता तो फिर पीछे कैसे होता? और एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे ही मुझे कोई बता भी रहा था, और ये बातें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं बताने वाली आपको, कि दुनिया बहुत पुरानी है, इंसान इतना पुराना नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी रिसर्चेस की, जो पिछली चीज़ों को जमा किया, वो कहते हैं कि इंसान दुनिया में सिर्फ 40,000 साल पहले आया, दुनिया तो उससे बहुत पहले थी। तो इंसान तो कल की बात है, और इब्लीस के सामने तो आदम ऐसे थे जैसे कल के बच्चे, लेकिन कायनात तो बहुत पहले है। तो अल्लाह इतनी पहले पैदा करने के लिए अव्वल था ना, फिर अल्लाह कहते तुम कहाँ फिरते हो? यानी फिर जाकर ऐसे मजबूरों से मांगते हो जो बेचारे अपने ऊपर से मट्टी भी नहीं हटा सकते।